समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नज़र और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। आपको भी मेरा नमस्कार अभिषेक।
हेलो मनोज, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मनोज। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। कहा, भारत वैश्विक ऊर्जा के रूप में उभर रहा है और इसके लिए हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है।
भूटान प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग टॉपगे टर्म सोल एज अनदर टेस्टमेंट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू नर्चरिंग ऑथेंटिक लीडर्स।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 64% से घटकर 39% रह गया है।
98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे शॉर्टली।
भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about School of Ultimate Leadership Conclave and International Mother Language Day. Well, it is a celebratory moment today as Prime Minister Narendra Modi has officially inaugurated the first ever School of Ultimate Leadership or SOUL in New Delhi. This isn't just another educational institution, Manoj. It's a revolutionary step towards shaping a new generation of leaders poised to tackle the world's toughest challenges and with a vision to drive India towards its ambitious goal of becoming Viksit Bharat, a fully developed India, solely setting the stage for innovation, transformation and global impact. This two-day conclave taking place at the Bharat Mandapam is already grabbing global attention and highlighting the importance of SOUL in creating world-class leadership. Mr. Modi said human resources play a major role in the development of a nation. He said every Indian is working very hard to achieve the vision of Viksit Bharat, and the country need resources that can drive innovation and skills.
वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए भारत को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। दुनिया हमारी ओर देख रही है और हमें चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया, नेतृत्व केवल एक पद धारण करने के बारे में नहीं है, ये भविष्य को आकार देने, रुझान स्थापित करने और जटिल वैश्विक समस्याओं को हल करने के बारे में है। सोल का लक्ष्य बस यही करना है, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से जुड़कर सोल ऐसे नेता तैयार करेगा जो न केवल भारत के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होगा।
Yes, absolutely. And we need leaders who are prepared for the future. SOUL will provide the tools and network to help them navigate the complexities of leadership. SOUL isn't just for political leaders. This platform will bring together leaders from diverse fields, from politics, sports, arts and media, to the spiritual world, business and the social sector. So these leaders will share the inspiring life journeys and offer insights into what makes a true leader in today's complex world.
Abhishek, कौन सी ऐसी विशेषताएं सोल को अन्य नेतृत्व कार्यक्रमों से अलग बनाती है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पहले से ही विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की राह पर है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो सीमाओं से परे सोच सकें, नवाचार ला सकें और ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर सकें।
Yes, absolutely. And speaking on this occasion, Bhutan's Prime Minister Dasho Shering Tobge said that Seoul is a brainchild of Prime Minister Narendra Modi, and it is yet another testament to the Prime Minister's unwavering commitment to nurturing authentic leaders. He said India is poised to become the Viksit Bharat.
प्रत्येक भारतीय विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप अगली पीढ़ी के नेताओं का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। सोल ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाने के लिए तैयार है, जो न केवल राजनीतिक वंशावली से बल्कि योग्यता और जुनून से आगे बढ़ते हैं। ये ईमानदारी, कौशल और नवाचार के आधार पर नेतृत्व के लिए उपकरण प्रदान करने के बारे में है, वे गुण जो 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं।
Yes, and it doesn't stop here. The Leadership Conclave at Seoul is a platform where leaders from every field will come together, share ideas and challenge each other to become the best versions of themselves. The knowledge and experiences they bring to the table will shape the leadership landscape for years to come. And India is on the cusp of something big. The vision of Viksit Bharat is closer than ever, and with initiatives like Seoul, it is clear that leaders of tomorrow are already been shaped today. So stay updated because the future of leadership is unfolding before our very eyes. Mm-hmm. And now moving on to our second segment in a Dateline section. Today we are also celebrating International Mother Language Day. We are diving into the vital role languages play in our educational systems, cultural preservation and sustainable development. Join us as we celebrate linguistic diversity, promote multilingual education and explore the importance of protecting endangered languages across the world.
क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लगभग 8,324 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी विविधता का सचमुच एक उल्लेखनीय प्रतिबिंब है ये भाषाएं। हालांकि वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तनों की ताकतों के कारण इनमें से कई भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस लागू होता है। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये दिन पहली बार 1999 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। ये हमारे समाजों, पहचान और शिक्षा प्रणालियों को आकार देने में भाषा के महत्व पर विचार करने का दिन है।
Yes, absolutely. And multilingual education, especially for minority and indigenous languages, has been shown to improve learning outcomes, engagement and critical thinking skills in students. When learners are taught in their mother tongue, they can better understand the material and connect more deeply with the content. And this connection between language, culture and learning is not just beneficial for students, but for society at large.
Abhishek, आज के दिन हम भाषाई विविधता के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का उत्सव मनाते हैं। बहुभाषी शिक्षा के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी भाषा, विशेष रूप से अल्पसंख्यक या स्वदेशी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भुलाया ना जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उस भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो जिसे वे पूरी तरह से समझते हैं।
Absolutely, but the efforts don't end there. International Mother Language Day also underscores the role of languages in achieving the sustainable development goals set by the United Nations. Whether it's promoting inclusion, fostering peaceful societies, or encouraging global cooperation, languages are key. The UN General Assembly itself recognized the significance of linguistic diversity in its 2007 resolution, urging member states to promote the preservation of all languages.
सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों। और जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, ये मान्यता बढ़ती जा रही है कि भाषा न केवल संचार के बारे में है, बल्कि हमारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में भी है।
Absolutely, and every language from the most widely spoken to the endangered ones carries with it centuries of knowledge, history and tradition. When we protect languages, we protect the diverse histories and perspectives of people from all walks of life.
जैसे ही हम इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करते हैं, आइए हम सभी उन भाषाओं के बारे में सोचें जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। भाषाओं की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को उस भाषा में शिक्षा का अधिकार है जिसे वे समझते हैं, अभी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अपनी भाषा की सुंदरता और अपने आसपास दूसरों की समृद्धि का उत्सव भी मनाते रहें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। ओडिशा भी टीबी मुक्त भारत निर्माण के अभियान से जुड़ गया है। इस साल तक देश तथा राज्य से टीबी के उन्मूलन की दिशा में ओडिशा सरकार की तरफ से कई सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर कटक से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
ओडिशा सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 19 टीबी प्रवण जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य असुरक्षित और वंचित आबादी में टीबी के मामलों का शीघ्र पता लगाना, निदान में होने वाली देरी को कम करना और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है। ये पहल टीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार ने इस अभियान में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देते हुए आर्थिक प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से टीबी रोगियों तक पहुँच सके और जागरूकता बढ़ा सके। अभियान के तहत टीबी के मरीजों को सरकार की ओर से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा उनके पोषण का ध्यान रखते हुए संतुलित आहार की भी व्यवस्था की गई है, जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो सके। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ने इस अभियान में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इस साल के अंत तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से इस साल के अंत तक टीबी मुक्त भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए ओडिशा भी इस अभियान से जुड़ गया है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में टीबी मुक्त ओडिशा के निर्माण के लिए पहल है।
इस 100 दिवसीय अभियान को देश में टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार कटक से मैं इतिश्री सिंह राठौर।
Yes, and India's agricultural exports have seen unprecedented expansion with many products making the way to international markets for the first time. This expansion is empowering farmers, boosting rural incomes, and putting India's rich agricultural heritage on the global map. Our correspondent reports that from exotic fruits to traditional staples, these first ever shipments highlight the government's vision for Atmanirbhar Bharat by creating new opportunities for Indian farmers.
In a significant milestone for the country's agricultural exports, India successfully sent first-ever shipments of premium Sangola and Bhagwa pomegranates to Australia and Bahrain. In a major boost to India's rice exports potential, the first consignment of red rice was sent to the USA. Besides, for the northeastern region of the country, the first-ever shipment of Burmese grapes, known as Leteku and Assamese, was sent from Guwahati to Dubai through Delhi. This export put Assam's exotic produce on the global map, proving the potential of India's northeastern states in international trade. The country also provided a taste of its indigenous grown jackfruit to Germany after the first shipment of the fruit was exported from Tripura to Germany by air route. Further, the Purandar figs, widely regarded for their taste and texture, also paved their way to Europe in a first ever shipment sent to Poland. For Parikrama, with Dipendra Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
Bharat ki gauravmayi sanskriti ke do ayam phir काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में एक हो रहे हैं। ये आयोजन महाकुंभ के दौरान देश की एकता का दृढ़ परिचायक है। प्रयागराज में जब संगम में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो काशी तमिल संगमम अपने शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तर और दक्षिण के रिश्तों को सुदृढ़ भी बना रहा है।
काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण 15 से 24 फरवरी तक काशी की पुण्यधरा पर आयोजित हो रहा है। काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण की मुख्य थीम ऋषि अगस्त के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। काशी तमिल संगम न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने का सशक्त माध्यम है। इस आयोजन में तमिलनाडु से आने वाले छात्र, शिक्षक, किसान, कारीगर, पेशेवर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाओं और शोधकर्ताओं को वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के कई शैक्षणिक सत्र में संस्कृति, भाषा, सभ्यता को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही काशी आए अलग अलग दलों को प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने और अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखने का मौका मिल रहा है। आईआईटी बीएचयू में इंडिया नॉलेज सिस्टम सेंटर के प्रमुख और काशी तमिल संगम कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर वी रामनाथन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की एकता जुड़ी है और ऐसे प्रयास उसे और मजबूत करते हैं।
भारत के दो प्राचीनतम भाषाओं को ही नहीं बल्कि दो प्राचीनतम संस्कृतियों को भी, जो पहले कभी एक थी लेकिन बीच में उनकी एकता में कुछ प्रश्न उठे गए और अलग तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया, उसको फिर से जो एकता थी उसको उजागर करने के रूप में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत ही साधुवाद देने लायक है और ये प्रेरणादायक भी है।
वहीं इस आयोजन में तमिलनाडु से सम्मिलित होने आए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय कांचीपुरम में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभचंद्रा ने कहा कि आयोजन काशी और कांची की परंपरा को मजबूत कर रहा है, ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए।
ये काशी तमिल संगम एक अद्भुत कार्यक्रम है क्योंकि काशी और कांची दोनों परंपराओं को मिलाकर यहां देखा जाता है और इस दोनों जगह का परंपरा जो पुराणों में हर जगह मिलता है उसको हम अभी साक्षात देख रहे हैं और अनुभूति कर रहे हैं इसको, इससे और काशी कांची की परंपरा सुदृढ़ होगी।
यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता की अनूठी मिसाल है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
देश विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां दुनिया भर से आने वाले निवेशकों को एक मंच मिलेगा। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सभी उद्यमियों के लिए निवेश के अपार अवसर और उसके बाद दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित है। और जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा।
मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और विशिष्ट मेहमानों की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इसमें 13 राजदूत, 6 उच्चायुक्त और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महावाणिज्य दूतों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राजनयिक क्षेत्र की भागीदारी का नेतृत्व जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड और मलेशिया के महावाणिज्य दूतों मिशनों के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड और कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नेपाल, मोरक्को, जिम्बाब्वे, अंगोला और बुर्किना फासो के राजदूतों के साथ साथ रवांडा, सेसिल्स, जमैका, लेसोथो और युगांडा के उच्चायुक्तों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश न केवल आदर्श निवेश स्थल बनकर उभर रहा है बल्कि ऑटोमोबाइल और ईवी इंडस्ट्री में विकास की नई परिभाषा भी लिख रहा है। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में देश के शीर्ष 10 राज्यों में और विश्व बैंक द्वारा आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे स्थान पर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आने से मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास के असीम अवसर उपलब्ध हैं। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
In business news today, the benchmark domestic equity indices today ended the week's last trading session with losses of over 0.5%, extending the downslide to the fourth consecutive session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex declined 425 points to close at 75,311. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 dropped 117 points to settle at 22,796. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.7% down at $75.89 per barrel, and WTI crude fell over 0.8% to trade at $71.89 per barrel when reports last came in.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन टेनिस, इंडिया की यूकी भामरी एंड क्रोएशियन पार्टनर इवान डोडिक विल फेस द यूनाइटेड किंगडम ड्यू ऑफ लॉयड ग्लासपूल एंड जूलियन कैश इन द मेंस डबल सेमीफाइनल्स ऑफ द कतार ओपन दिस इवनिंग। द मैच इज सेट टू बिगिन एट 5:40 PM IST। Earlier, Bhambri and Dodik secured a spot in the semifinals with a hard-fought victory over top seeds Mate Pavic of Croatia and Marcelo Arevalo of El Salvador in the quarterfinals.
Indian Super League football mein North East United Football Club ka mukabla Shillong ke Jawaharlal Nehru Stadium mein Bengaluru Football Club se hoga. Match aaj sham 7 baje se khela jayega. Dono teamein play-off mein jagah banane ki prabal daavedar hain. North East 21 matchon mein 32 ankon ke saath chauthe sthan par hai, jabki Bengaluru 20 matchon mein 31 ankon ke saath chhathe paidan par hai. Isse pehle Jamshedpur Football Club ne kal raat Kolkata mein Mohammedan Football Club ko 2-0 se haraya.
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 21st of February 1948, the draft constitution of India was submitted to the President of the Constituent Assembly by the drafting committee. The committee had received a draft constitution 4 months earlier, prepared by the Assembly's constitutional advisor, B.N. Rao. Rao's draft reflected the decisions taken by the Assembly on the reports of various committees that were tasked with drawing up constitutional provisions on specific parts of the Constitution. The drafting committee, between October 1947 and February 1948, scrutinized, tweaked, and added to Rao's draft, and what emerged from this process was the Draft Constitution of India, 1948.
The draft constitution consisted of 315 articles, organized around 18 parts and 8 schedules. It covered a range of topics including the structure of government, rights and center-state relations, etc.
This draft constitution was the first blueprint of the Indian constitution that was publicly available. It was widely circulated to the members of the assembly, provincial governments, central ministries, the Supreme Court and High Courts, and the general public, along with an invitation to provide feedback and suggestions.
The drafting committee reviewed and took decisions on comments it received and prepared amendments. Such democratic exercises of consultation and consensus amongst the members and people of India helped make the largest written constitution of the world, the Constitution of India.
We remember freedom fighter Birendranath Dattagupta, who was martyred on the 21st of February 1910. Datta was a member of the Anushilan Samiti. In the early 1909, he was sent by Bagha Jatin to receive arms training in the Sundarbans under the supervision of Satish Bose. After returning to Calcutta, he shot DSP Khan Bahadur Shamsul Alam, the prime investigator in the Alipur bomb case, on the 24th of January 1910 in the corridor of the Calcutta High Court. Birendranath was chased and arrested by the police. He died on the gallows in the Presidency Jail on the 21st of February 1910. We salute the great martyr.
We also remember Martyr Chand Sukur. On the 21st of February 1947, during the Tibhaga movement in Dinajpur, now in Bangladesh, the police entered the Thumniya village in Dinajpur in search of Doma Singh, a leader of the Kisan Sabha. The peasants assembled in front of Doma's house to resist the arrest of their leader. Sukur Chand rushed towards the police with a lathi in his hand, followed by his wife. The police opened fire, and both Sukur Chand and his wife died on the spot. We salute the great martyrs.
We remember freedom fighter Mahipal Singh from Bhagalpur district, Bihar, who actively participated in the civil disobedience movement of 1930. On the 15th of February 1932, Mahipal joined around 4,000 people around the Tarapur police station to celebrate Jhanda Satyagraha Divas. The police warned them to disperse and then opened indiscriminate firing. Mahipal Singh was critically injured and succumbed to his injuries on the 21st of February 1932. We salute the great son of the soil.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस।
Om Prakash Chibbar passed away on this day in 1998. He was an Indian film actor. He was born in Jammu and was a well-known character actor in Hindi cinema. His most famous movies are Gopi, Halchal, Namak Halal, Sharabi. He also produced Jahanara starring Bharat Bhushan, Shashikala, Prithviraj Kapoor and Mala Sinha. Prakash played significant characters in films including Das Lakh, Annadata, Charandas, Shadu or Shaitan. Prakash joined All India Radio in 1937 at the monthly salary of Rs. 25. He was known as Fateh Din, a radio personality, and his programs made him popular across Punjab. Let's listen into a dialogue from one of his movies.
Abhishek, unki antim film Naukar Biwi ka thi. महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वे खासे सराहे गए।
मैं नजर आ रहा हूँ?
नहीं साहेब, आपका कान नजर आ रहा है।
अब
हाँ, आप नजर आ गए।
अबे और टपन के, कल तक तो तू सीधा देख रहा था, आज डेंगा कैसे हो गया?
नहीं साहब, मैंने कभी आपकी तरफ सीधे नहीं देखा। आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपकी ओर सीधा कैसे देख सकता हूँ? जब भी आपको लगा मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, उस वक्त मैं कहीं और देख रहा होता था। कहीं और?
प्यारे मोहन, लुक हियर।
देख रहा हूँ।
अरे तुम भेंगे हो या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मगर आदमी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो। आज कह रहे हो कि मैं भेंगा हूँ, कल कहोगे कि मैं लंगड़ा हूँ, परसों कहोगे कि मैं हकला हूँ।
आज तक तो मैं ठीक बोलता आया हूँ, अचानक Yes,
Sir. And Vijay Prakash was born on this day in 1976. He's an Indian playback singer and also a music director from Karnataka. He has given his voice to predominantly Kannada, Tamil and Telugu language films and also Hindi, Malayalam and Marathi language films. He has performed in shows with Zakir Hussain. Prakash won the Karnataka Government Best Playback Singer Award for 2016. And Manoj is among the four artists credited for the song Jai Ho, which won the 2008 Academy Award for Best Original Song. Specifically, he sang the portion with the words Jai Ho that takes an extended high pitch at numerous junctures of the song, and the song also won a Grammy Award for Best Song Written for Motion Picture, Television or Other Visual Media. Let's listen into that song.
आज पुण्यतिथि है पार्श्व गायिका जोहरा बाई अंबाले वाले की। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन गाने गाए, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं। उनका जन्म पंजाब के अंबाला में एक संगीत घराने में हुआ था। कह सकते हैं कि गायकी का ये हुनर उन्हें विरासत में मिला था। अपने दादा गुलाम हुसैन खां से जोहरा बाई ने संगीत की शिक्षा बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी।
मस्त हवाएं आई, पिया घर आ जा,
आजा पिया घर आ जा।
और मुझ पर
Yes, and Raj Chakraborty was born on this day in 1975. He is a film director, actor, producer and politician. He is also one of the most commercially successful filmmakers of Tollywood. Before directing his debut film, he was busy in Bengali TV. Raj Chakraborty was associated with Zee Bangla's laughter show Miracle, hosted by Meer, and the dance competition Dance Bangla Dance, judged by Mithun Chakraborty during the initial days. He also directed star Jolsha's laughter program, I Laugh You, and he has been a member of the Legislative Assembly of West Bengal.
आज पुण्यतिथि है अभिनेत्री नूतन की। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। सुजाता बंदनी में मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने ये साबित किया कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता है।
युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे।
आज जन्म दिवस है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जयंती राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे। ये रचना थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था।
Yes, Nina Simone was born on this day 1933. She was an American singer, songwriter, pianist, composer, arranger and civil rights activist. Let's listen in to a hit track, House of the Rising Sun.
There is a house in New Orleans. Call it the Rising Sun.
Yes, and David Foster Wallace was born on this day in 1962. He was an American novelist, short story writer, essayist, and university professor of English and creative writing. Wallace's 1996 novel, Infinite Jest, was cited by Times Magazine as one of the 100 best English language novels from 1923 to 2005.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.
नमस्कार.